अध्याय दो, प्रसाद, समरसता और संगीत। जयशंकर प्रसाद शब्द की सभी छायाओं में छायावाद के वरिष्ठ कवि हैं, और जैसा पहले दिखाया जा चुका है, वे छायावाद के सबसे खांटी रचनाकार हैं। स्वदेशी भाषा बंगला और विदेशी अंग्रेजी के प्रति उनकी उन्मुखता प्रायः नहीं के बराबर है, जो उनके युग में आधुनिक भावबोध की स्वीकृत अग्रणी भाषाएँ थीं। वहाँ से उन्होंने कोई अनुवाद नहीं किए, अनुवादियों उन्होंने कहीं से भी नहीं किए, और न उन्होंने उन साहित्यों को कहीं विशेष चर्चा का विषय बनाया। अपनी रचनाओं में ब्रज और खड़ी बोली से अलग यदि कोई संस्कार है तो संस्कृत के, और किसी सीमा तक उर्दू के। निराला के अपने एक पत्र में कुछ व्यंग की मुद्रा में प्रसाद को लिखते हैं, नोटेड कामा, पर मैंने सुना है आप उपनिषदों से नीचे उतरना पसंद नहीं करते, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा यदि आपको नीचे उतार सकूं। निराला का व्यंग यहाँ प्रसाद की पाठ्य सामग्री को लेकर है, पर अपने रचनाक्रम में प्रसाद उपनिषदों से उतरे थे बिना किसी सहायता के, छायावाद की भावभूमि पर। संस्कृत की प्रेरक शक्ति का उन्होंने बराबर उपयोग किया है अपने ढंग से। यह आकस्मिक नहीं कि छायावाद पद में छाया की व्याख्या के लिए वे ठेठ संस्कृत स्रोतों से व्युत्पत्ति प्रस्तावित करते हैं, और रामचंद्र शुक्ल के विरोध में रहस्यवाद के विकास को पूरी तरह भारतीय परंपरा के अंतर्गत सिद्ध करते हैं। यूनाइटेड कामा, वर्तमान रहस्यवाद की धारा भारत की निजी संपत्ति है, इसमें संदेह नहीं। यूनाइटेड कामा, संस्कृत के तत्वों पर पोषित, उर्दू परंपरा से परिचित और बंगला तथा अंग्रेजी से अपरिचित, ऐसी कुछ बनावट लगती है प्रसाद की मानसिकता की। इस तैयारी के साथ वह काव्यधारा प्रवर्तित हुई जिसे आगे चलकर छायावाद नाम मिला। झरना के द्वितीय संस्करण के प्रकाशकीय निवेदन में इस बात को आग्रहपूर्वक कहा गया है, यूनाइटेड कामा, जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज दिन छायावाद का नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही हुआ था। यूनाइटेड कामा, प्रसाद की ऐसी तैयारी रविंद्रनाथ से काफ़ी कुछ भिन्न, जहाँ संस्कृत का संस्कार पूरा है पर अंग्रेजी की मिलावट कम नहीं। यहाँ यह तथ्य भी ध्यान रखने योग्य है कि गीतांजलि तथा झरना के प्रथम संस्करण के प्रकाशन के बीच का समय बहुत अंतर नहीं है। यह ठीक है कि झरना का अधिकतर उत्कृष्ट रचनाएं दूसरे संस्करण में आई, इस ओर अपने सावधान शैली में रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद को उदय पर विचार करते हुए ध्यान दिलाया था। यूनाइटेड कामा, झरना के उन 24 कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता। इस द्वितीय संस्करण में ही छायावाद कही जाने वाली विशेषताएं स्फुट रूप में दिखाई पड़ती हैं। यूनाइटेड कामा, फिर भी प्रथम संस्करण में समर्पण, परिचय तथा शीर्ष कविता झरना छायावाद के आरंभिक रूप की परिचायक है। आचार्य शुक्ल वस्तुतः यह श्रेय सुमित्रानंदन पंत के पल्लव को देना चाहते हैं। इसका प्रकाशन झरना के प्रथम संस्करण के बाद और दूसरे संस्करण के पहले हुआ। यहाँ प्रसाद की रचनात्मक तैयारी और उनकी अग्रणी वृत्ति के संबंध में यह समझा जा सकता है कि छायावाद के विकास में बंगला और अंग्रेजी की भूमिका प्रासंगिक ही है, आधिकारिक नहीं। मनुष्य की अवधारणा के रूप हिंदी साहित्य के इतिहास में कई बार बदले हैं, और इसी के साथ परम तत्व को लेकर उसके रिश्ते भी। आदिकाल में मनुष्य का ईश्वर की महिमा से युक्त वर्णन में रूप में वर्णन हुआ है, जबकि भक्तिकाल में यह चित्रण ईश्वर का मनुष्य के रूप में हुआ है। आगे फिर रीतिकाल में ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण होता है। आधुनिक काल में आकर मनुष्य सारे चिंतन का केंद्र बनता है और ईश्वर की धारणा व्यक्तिगत आस्था के रूप में स्वीकृत होती है। साहित्य या की कलाओं में उसका चित्रण प्रासंगिक नहीं रह जाता। इस दृष्टिकोण के कारण अनुसार मनुष्य ईश्वर का सबसे बड़ा आविष्कार है तो ईश्वर मनुष्य का। इसी का परिणाम यह देखा जा सकता है कि प्रेम और भक्ति, लौकिक और अलौकिक संबंध जो अभी तक या तो अलग अलग अनुभव थे या कभी कभी एक दूसरे का संस्पर्श करते थे, अब उनका अंतर आधुनिक काल में आकर विलीन हो गया है। रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि में जब उसके नीरव पदचाप का उल्लेख होता है तो जो आता है बराबर आता है, तो वह पदचाप प्रेमी और परम तत्व दोनों की है। प्रसाद कवि जीवन आरंभ करते हैं भारतेंदु की तरह ब्रजभाषा से। इस समय उनके यहाँ भक्ति और रीतिकालीन संस्कारों के अवशेष हैं। यद्यपि बीच बीच में कुछ नए विषय झांकते दिख जाते हैं। कवित्व सवैया और पदों का व्यवहार चल रहा है। ब्रजभाषा प्रयोग के दो स्तर हैं, इस पर आगे चर्चा होगी। और भारतेंदु कुछ एक उत्तरकालीन अपवादों को छोड़कर अपने समूचे कवि जीवन में ब्रजभाषा में कविता लिखते हैं। गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। प्रसाद का रूपांतरण रचनाकर्म की दृष्टि से अधिक कठिन है। वे कुछ ही समय बाद ब्रजभाषा को छोड़कर कविता के लिए खड़ी बोली का वर्णन करते हैं। अपनी लंबी कविता प्रेम पथिक उन्होंने ब्रजभाषा में लिखी, फिर बाद में उसका संशोधित परिवर्धित रूप प्रायः 8 वर्ष बाद खड़ी बोली में लिखा। प्रेम पथिक का रूपांतरण समूची आधुनिक हिंदी कविता के काव्य भाषिक रूपांतरण का प्रतीक बिंदु है, और इस रूपांतरण के समानांतर ही कवि की संवेदना में महत्वपूर्ण बदलाव आता है। इस बिंदु पर प्रेम के लौकिक अलौकिक रूप प्रेम और भक्ति के बीच अंतर लुप्त हो जाता है। भारतेंदु ने अपनी नाटिका श्री चंद्रावली के समर्पण में प्रेम के इन दोनों रूपों का उल्लेख इस तरह से किया था, यहाँ इसमें तुम्हारे उस प्रेम का वर्णन है, इस प्रेम का नहीं जो संसार में प्रचलित है, बंद। यह समर्पण सीधे प्यारे कृष्ण के लिए है, इन शब्दों में नोटेड कामा, लो तुम्हारी चंद्रावली तुम्हें समर्पित है, नोटेड कामा बंद। प्रसाद के झरना का समर्पण इस प्रकार है, हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जलबिंदु कहाँ निधि क्षीर, हमारा कहो न अब क्या रहा, तुम्हारा सब कब का हो रहा, तुम्हें अर्पण और वस्तु तो दी, छीन लो छीन ममत्व मदीय। यहाँ भक्ति का अद्वैत क्रमशः प्रेम के अद्वैत में बदल रहा है। भारतेंदु तुम्हारी चंद्रावली तुम्हें समर्पित करते हैं सहज भाव से, प्रसाद को यह समर्पण समझ में नहीं आता, तुम्हें अर्पण और वस्तु तो दी। उनके लिए तब समर्पण का पात्र प्रेमास्पद और परम तत्व दोनों है। काव्य के स्तर पर यह समझ सकना आसान है कि प्रेम और भक्ति दोनों का उद्देश्य एक है, अहम का बलिदान, यद्यपि दोनों के माध्यम में अंतर है। एक जगह वह अहम को मिटाता है, दूसरी जगह अहम को बृहत्तर सत्ता में विलीन कर देता है। यहाँ प्रसिद्ध कवि तथा समीक्षक एलियट के साक्ष्य पर कहा जा सकता है कि इस क्रम में कविता भी अपने में अहम भाव से निष्कृत है। यों भक्ति और प्रेम की समानांतर प्रक्रिया कविता या कला रचना में द्रष्टव्य है, जो उत्तरोत्तर ऐहिक होती गई है। इस संदर्भ में प्रसाद भारतेंदु के बजाय रविंद्रनाथ के निकट पहुंच रहे हैं, प्रभाव की दृष्टि से नहीं तुलना की दृष्टि से। रहस्यवाद की परंपरा कैसे ठेठ भारतीय द्वंद्वों और हिंदी साहित्य में अपने ढंग से चलती आई है, इसका विस्तृत सुधारण विवेचन उन्होंने रहस्यवाद शीर्षक अपने लंबे निबंध में किया है। आधुनिक युग में खड़ी बोली के प्रवर्तन प्रसंग में प्रायः तर्क दिया जाता है कि नए युग में जो राजनैतिक सामाजिक आर्थिक जागरूकता विकसित हो रही थी, उसकी अभिव्यक्ति परंपरागत ब्रजभाषा माध्यम में संभव न थी। इसीलिए लेखकों और कवियों ने क्रमशः ब्रजभाषा का परित्याग करके खड़ी बोली को चुना। यह बात अपनी जगह पर सही है, पर यहाँ जोड़ना होगा कि समाज और राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं, दार्शनिक मान्यताओं के क्षेत्र में बदलाव आ रहा था। ब्रजभाषा परंपरा से भक्ति की भाषा थी, नए ढंग की अद्वैत अनुभूति वहाँ निखर नहीं सकती थी। भारतेंदु और प्रसाद के बीच के इस अंतर को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। अपने समय के लावणीबाजों के बीच प्रचलित खड़ी बोली को अपनाकर ही प्रसाद झरना का समर्पण लिख सकते थे, जहाँ उनकी मुद्रा बन सके कि वे भारतेंदु की तरह गुलाम राधा रानी के और सखा प्यारे कृष्ण के भर नहीं हैं, और देव का तरह महज वृद्धावन तो और भी नहीं, वरन वे स्वयं श्याम है, जैसे कि वंजना उन्होंने रहस्यवाद शीर्षक अपने निबंध के अंतिम अंश में दी है। प्रसाद का काव्य विकास एक प्रकार से समूचे आधुनिक हिंदी काव्य के विकास यात्रा का एक संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत कर देता है। जब उन्होंने लिखना आरंभ किया, उस समय ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली का द्वंद्व निपटा नहीं था। काव्य रचना में खड़ी बोली के समर्थक श्रीधर पाठक अथवा मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं अपनी कविता में ब्रजभाषा का सहारा नहीं छोड़ा था। प्रसाद ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया। उनका आरंभिक काव्य एकांत रूप में ब्रजभाषा में है। इस ब्रजभाषा प्रयोग के दो बहुत स्पष्ट स्तर लक्षित किए जा सकते हैं। चित्राधारा संकलन के वर्तमान रूप में उनका केवल ब्रजभाषा काव्य संकलित हुआ है। अंत में स्फुट कविताओं के दो खंड हैं, पराग तथा मकरंद बिंदु। दोनों अंश ब्रजभाषा में होने पर भी उनकी प्रकृति में गुणात्मक अंतर है। पराग खंड के सभी कविताओं के शीर्षक दिए गए हैं, उनकी अलग अलग पहचान है। मकरंद बिंदु कवित्त सवैया और पदों का समुच्चय है, जहाँ एक पहले से चली आती भावधारा का प्रवाह है। रचनाओं का अपना विशिष्ट नाम रूप नहीं, आधुनिक भावबोध में जाति चरित्र से कहीं अधिक व्यक्तिगत विशिष्टता पर बल है। ऐसी संकलन के नाटकों और चंपू में जो काव्य के अंश है, वहाँ ब्रजभाषा का प्रयोग कुछ और तरह का है। ऐसे खड़ी बोली का ब्रजभाषाकरण कहा जा सकता है। यहाँ सामान्यतः तत्समाग्राही खड़ी बोली पर ब्रजभाषा का एक झीना आवरण चढ़ाया गया है। मुख्य गद्य भाग तो खड़ी बोली में ही है। एक दो धारणों से इस रोचक भाषिक मिलावट का रूप समझा जा सकता है। बभ्रुवाहन चंपू का आरंभिक अंश इस प्रकार है। धवल मनोहर दृष्टि सुखदायक ही अनुराग, मनोह सुधा के बिंब में लपट्टो नलिल पराग, नवघन सुंदर श्याम उर मनहो हीर का भास, कालिंद जल नील में कहे अरविंद विकास। यहाँ चार पंक्तियों में कुल 5 ब्रजभाषा प्रयोग है। इनमें से समूचे प्रसंग को ब्रजभाषा में ढाला गया है। यह एक प्रकार से आधुनिक काल के आरंभ में हिंदी काव्य भाषा के दोनों आधारों को सापेक्ष स्थिति का उदाहरण है। प्रसाद कैसे क्रमशः ब्रजभाषा से खड़ी बोली की ओर उन्मुख होते जाते हैं, उसका रोचक साक्ष्य उनकी आरंभिक वर्णनात्मक कविता प्रेम पथिक प्रस्तुत करती है। प्रेम पथिक को प्रसाद पहले ब्रजभाषा में लिखते हैं, दोहा और बरवे जैसे छंदों में। फिर प्रायः 8 वर्ष बाद उस काव्य को वे खड़ी बोली में रूपांतरित करते हैं। अब छंद अतुकांत होता है। ब्रजभाषा में कुल पंक्तियाँ 134 थी, अब 270 हो जाती हैं। एकदम दूनी किसी रचना का यूँ ब्रजभाषा से खड़ी बोली में रूपांतरित किया जाना संरचनाकार द्वारा अपने आप में अनूठा है और रचनाकार की भाषा निष्ठा में परिवर्तन का रचनात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। प्रेम पथिक के दोनों रूपों से तुलना के लिए कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। प्रेम सिंधु अथा था लयन को वीर, हाँ मनोरथ तरल तुंग तरंग उठत गंभीर। प्रेम पथिक ब्रजभाषा रूप। इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। प्रेम प्रतीक वर्तमान खड़ी बोली रूप। स्पष्ट ही भाषिक परिवर्तन में यहाँ संवेदना की बनावट बदल दिया है। ब्रजभाषा में केवल प्रेम का वर्णन है, खड़ी बोली के इस आरंभिक रूप में प्रेम और आध्यात्म एकाकार हो रहे हैं। खड़ी बोली के ब्रजभाषाकरण का एक और उदाहरण द्रष्टव्य है बभ्रुवाहन से। यौवन उषा प्रथम प्रकट जब हिये भई है, शैशव उतारा निकर मलिनता धाय लई है। हाय प्रणय स्मृति सूर्य उदय नितहित नव होवय, पूर्व राग विस्तार अलौकिक रंग सजोवय। यहाँ एक ओर परंपरित शब्दावली तथा अप्रस्तुत विधान है और बीच बीच में कुछ नए प्रयोग तथा बिंब झांक रहे हैं। नायिका की वयसंधि की विस्तृत चर्चा रीतिकालीन काव्य में भी हुई है। यहाँ भाषा की वयसंधि का जैसा नाजुक रूप देखा जा सकता है। चित्रधारा के अंतिम दो खंडों पराग तथा मकरंद बिंदु की तुलना में कवि के संवेदनात्मक विकास को और अच्छी तरह समझा जा सकता है। पराग में एक ओर परंपरित ब्रजभाषा का प्रयोग है, दूसरी ओर द्विवेदी युग की तीव्रतात्मक वर्णन शैली है और तीसरी ओर कविताओं को नए ढंग से शीर्षक दिए गए हैं तथा कुछ नए प्रयोग वहाँ झलक मारते दिखाई देते हैं। एक कविता का शीर्षक है संध्या तारा, जो एक प्रकार से छायावाद के संध्या कविताओं को पूर्वाशित करता है। वर्णन शैली द्विवेदी युगीन काव्य भाषा ब्रजभाषा आरंभ की पंक्तियाँ इस प्रकार है। संध्या के गहन महासुंदर वरन को हव झलकत तू अमल रतन। प्रसाद का यह आरंभिक काव्य संवेदनात्मक त्रिवेणी का यूँ अद्भुत साक्ष्य प्रस्तुत करता है। कुछ नए ढंग के शीर्षक हैं नीरव प्रेम, विस्मृत प्रेम, कल्पना सुख। ब्रजभाषा के जमीन पर द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के सहारे नए छायावादी विषयों की कलम लगाई गई है। इस तुलना में अंतिम खंड मकरंद बिंदु का विधान बिल्कुल फर्क दिखाई देगा। यहाँ पारंपरिक शैली में बिना शीर्षक दिए गए कवित्त सवैये और पद संकलित हैं, जहाँ भक्ति और रीति परंपरा के अवशेष मात्र नजर आएंगे। मकरंद बिंदु की भावभूमि में प्रसाद अपने पूर्ववर्ती कवि भारतेंदु के नज़दीक हैं, किंतु पराग खंड के ब्रजभाषा काव्य में छायावाद का पूर्व रूप उभरता दिखता है। परंपरा और प्रयोग के रिश्ते को इससे अधिक व्यावहारिक स्तर पर नहीं समझा जा सकता। अपने रचना काल के आरंभ से ही प्रसाद हिंदू देव माला के तीन चरित्रों को विशेष रूप से आकृष्ट रहे हैं, वह हैं इंद्र, शिव और कृष्ण। इन तीनों चरित्रों की एक साझी विशेषता यह है कि वे जीवन के विविध विरोधी पक्षों को एक साथ समोते हैं। इंद्र में योद्धा और संगीत प्रेमी, शिव में सबसे बड़े योगी और वैसे ही भोगी, ज्ञानी और भोलानाथ, क्रोधी और आशुतोष। कृष्ण में प्रेमी, कूटनीतिज्ञ और दार्शनिक के परस्पर विरोधी पक्ष ऐसे घुल मिल गए हैं कि सहसा उनके विरोध तत्व का आभास ही नहीं होता। इंद्र के संबंध में मौलिक रूप से चिंतन करके प्रसाद ने अपना निबंध लिखा, प्राचीन आर्यावर्त और उसका प्रथम सम्राट इंद्र। रहस्यवाद शीर्षक निबंध में वरुण और इंद्र की तुलना इंद्र के पक्ष में की है। शिव और कृष्ण के प्रति उनका आकर्षण जगह जगह व्यक्त होता है। रहस्यवाद के प्रसंग में भारतीय चिंतनधारा का विकास क्रम दिखाते हुए वे इन चरित्रों पर टिप्पणी करते चलते हैं। वैदिक साहित्य में आत्मवाद के प्रचारक इंद्र की जैसी चर्चा है, उर्वशी आदि अप्सराओं का जो प्रसंग वह उनके आनंद के अनुकूल ही है। पौराणिक युग में राम और कृष्ण के अवतार परिकल्पना में कवि का स्पष्ट रुझान कृष्ण के लिए है। राम की प्रतीक्षा के लिए उनके पास बहुत खीज और व्यंग ही है। इस पौराणिक धर्म के युग में विवेकवाद का सबसे बड़ा प्रतीक रामचंद्र के रूप में अवतरित हुआ, जो केवल अपनी मर्यादा में और सहिष्णुता में महान रहे, किंतु पौराणिक युग का सबसे बड़ा प्रयत्न श्री कृष्ण के पूर्णावतार का निरूपण था। जिनमें गीता का पक्ष जैसा बुद्धिवाद था, वैसा ही ब्रजलीला और द्वारका का ऐश्वर्य भोग आनंद से संबद्ध था। यूँ विवेक के प्रतीक वैदिक काल में वरुण थे, पौराणिक काल में राम, आनंद के प्रतीक क्रमशः इंद्र और कृष्ण रहे। हिंदी देवमाला में रुद्र शिव की परिकल्पना प्रसाद के अनुसार भारतीय सांस्कृतिक विचारधारा के सबसे उपयुक्त परिकल्पना कही जा सकती है, जहाँ आर्य अनार्य, उत्तर दक्षिण, वैदिक पौराणिक सभी प्रकार के द्वत्वों का परिशमन होता है। प्रसाद रहस्यवाद शीर्षक निबंध में भारतीय मानस के विविध पक्षीय विकास का क्रम स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, नोटेड कामा, इन छांदोग्य आदि श्रुतियों के प्रकाश में यह रति प्रीति अद्वैत मूला भक्ति रहस्यवादियों में निरंतर प्रांजल होती गई है। इस दार्शनिक सत्य को व्यावहारिक रूप देने में इस विशेष अनाचार की आवश्यकता न थी। संसार को मिथ्या मानकर असंभव कल्पना के पीछे भटकना नहीं पड़ता था। दुखवाद से उत्पन्न सामान्य और संसार से विराग की आवश्यकता न थी। अद्वैत मूलक रहस्यवाद के व्यावहारिक रूप में विश्व को आत्मा का अभिन्न अंग शवागमों में मान लिया गया था। मानकर चला जाएगा कहाँ, बाहर भीतर आनंद घन शिव के अतिरिक्त दूसरा स्थान कौन है। भारतीय मानस में गहरे अंतर्व्याप्त विरुद्धों के सामंजस्य की विराट परिणति है। प्रसाद का मानना है कि भारतीय संस्कृति की मूल विचारधारा आनंद की है, उसमें जब जब विवेक पर बल दिया गया तब तब दुख का दर्शन बढ़ा है। इसके प्रतीक है अपने अपने ढंग से वरुण, राम और बुद्ध। आनंद को रूपायित करने वाले चरित्र हैं इंद्र, शिव और कृष्ण।